العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبي رحمة شفيع أمت صلى الله عليه وسلم کو فرمان ذیشان ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے اپنے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی
جی بھائی، میرا سوال ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر کوئی سواری 300 روپے میں طے کرتا ہوں، کوئی اس سے کرایہ طے کرتا ہوں، اگر وہ درمیان میں وہ کہتی ہے جی میں نے یہیں پہ اترنا ہے، تو میں اس سے پورا کرایہ لوں گا یا اس کا جتنا بنتا ہوا اتنا؟
ٹھیک ہے جی مفتی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ کسی مزدور سے کوئی کام کروایا گیا ہے اور وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، تو جتنا کام ہوا ہے اتنی اجرت تو دینی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا طے ہوا تھا اتنا دینا ضروری ہے یا نہیں۔
جی،
اب بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا کہ طے ہوا تھا وہی دینا ہوگا، لیکن یہاں رکشے کی بات ہے تو اس طرح کے معاملات کے اندر رکشے والے کو چاہیے کہ اس اتنی دور تک آنے کا جتنا پیسہ بنتا ہے وہ یہ لے لے، اس میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہے اس کے لیے۔
ٹھیک ہے،
جزیات بیان کیے ہیں فقہ کرام نے اس حوالے سے بھی، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عربی میں جمال کہتے ہیں جو اونٹ پر بٹھا کر لے جاتا ہے، تو جمال اور جو حدیدہ ہیں اس کے حوالے سے یہ مسائل بیان کیے گئے کہ راستے میں اس کا جانور جو لاچار ہو گیا یا سفر قطع نہ کر سکا مزید، تو پھر یہ ہے کہ جتنا سفر کٹا ہے اس کی جو اجرت ہے وہ وصول کی جائے گی۔
ٹھیک ہے،
تو یہی
سواری کی طرف سے ہو تو بھی یہی ہوگا؟
جی،
سواری کی طرف سے، یعنی ایک تو ہے نا جو لے کے جا رہا ہے اس کی طرف سے گزرا ہے۔
جی ہاں،
ٹھیک۔ اگلا سوال دیجیے۔
عنایت، میرا نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ ایک چیز میرے پاس نہیں ہے اور میں فروخت کر سکتا ہوں ہوا میں؟
ٹھیک ہے جی، عام حالات میں تو آپ وہ چیز فروخت نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کی دو صورتیں مزید بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی بندہ آرڈر پر مال بنواتا ہے، آپ آرڈر پر مال بنا کر دیتے ہیں، میکنگ کرتے ہیں اور تیار کر کر دیتے ہیں، جیسا کہ زیورات ہے یا فیکٹریاں جو ہیں وہ مختلف گارمنٹس کی چیزیں بنا کر دیتی ہیں، کینٹینر کے کینٹینر آرڈر لے لیتی ہیں اور آرڈر لینے کے بعد پھر وہ بنا کر دیتی ہیں، میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فلیٹ ہیں تو فلیٹ جو ہے وہ صرف ان کا نقشہ دکھا کر ان کا سودا کیا جاتا ہے، اور فرسٹ جو ڈیلنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ نقشہ دکھا کر ہی ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جن کے اندر میکنگ کا عمل پایا جاتا ہو تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بنا کر دی جائیں۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق میکنگ سے نہیں ہوتا، وہ تیار شدہ حالت میں ملتی ہیں، یا ان کا تعلق قدرتی اجناس سے ہوتا ہے، فروٹ ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی گنجائش کی ایک صورت موجود ہے کہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس سے پہلے اسے بیچتے ہیں، اسے بے سلم کہتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ जितने में सौदा हुआ है सारी रकम आप ले लेंगे, सारी रकम आपने वसूल कर ली और एक महीने से ज्यादा की उधार होगी, एक महीने से कम की उधार नहीं होगी। इसके साथ साथ और भी शरायत हैं। एक शर्त यह है कि वो जो चीज आपने खरीद बेची है या खरीदी है इस हालत में, वो सौदा होने से लेकर डिलीवरी जब तक होनी है मार्केट में दस्तियाब हो, मार्केट में पाई जाती हो। अगर वो मार्केट में दस्तियाब नहीं है तो ये शर्त नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी तो ऐसा करना जायज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आजकल तो मंडियों में आम मिल रहे हैं, दो महीने बाद आम नहीं मिलेंगे। अब कोई आम की जो है वो कर्ज़ो फरोख बेसलम के तौर पर उस मौसम में करता है जब मार्केट में वो चीज हो ही ना, तो जायज नहीं होगा। तो बेसलम की शरायत है, बेसलम दिगर कर्ज़ो फरोख के मामला से जुदागाना एक चीज है। आम कर्ज़ो फरोख में ये होता है कि आप माल बेचते हैं उधार में, पैसे बाद में लेने होते हैं। बेसलम के अंदर पैसे सारे ले लेते हैं, माल कम से कम एक महीने की यानी एक महीने के उधार पर होता है, ज्यादा की कोई कैद नहीं है।
ठीक है,
लेकिन बेसलम की कुछ शराइत है।
ठीक, ये आपने जवाब इरशाद फरमाया और मोटी मोटी एक उसूल बयान किए हैं। तो अब मैं हूँ या मदनी चैनल के नाजरीन में कोई खरीदार बैठा हो या बेचने वाला बैठा हो, ताजिर बैठा हो, तो वो खुद फैसला करेगा अपने मामलात का या उसको रहनुमाई लेना होगी कि मुझे लग रहा है कि ये सूरत है आप इरशाद फरमाया।
देखिए, इनका जो सवाल था मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है इनके जहन में ये हो कि जो फ्लैट वगैरह बिकते हैं ये बेमादूम में आते हैं, तो मैंने बैन कर दिया। इस्तिस्ना में आते हैं,
ठीक है,
मादूम जो चीज मौजूद ना हो उसको बेचना जायज नहीं है।
ठीक है,
लेकिन एक सूरत जवाब किए जहाँ मेकिंग का अमल पाया जाए। फिर लोग अगर ये समझते हैं कि जी कुछ सूरत ही नहीं हो सकती, तो मैंने फिर एक तीसरी सूरत बयान की है।
ठीक,
अब बात यह है कि तीन अलग अलग कैटेगरीज आ गई। अब किसी हवाले से किसी का कोई सवाल मजीद बनता है तो मजीद तफसीलात तो उलमा से लेनी होंगी।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब से अहकाम तिजारत में सवाल ये है कि क्या कंसल्टेंसी के तौर पर कमीशन ले सकते हैं या नहीं, इसकी वजाहत फरमा दें।
ठीक है जी,
देखें दो अगर एक दो लफ्ज और कम हो जाता तो बड़ा ही इनाम मिलता है इनको सवाल करने पर। यानी कंसल्टेंसी किस चीज की कंसल्टेंसी?
कंसल्टेंसी
तो एक फील्ड है भाई, हमारा एक डॉक्टर है वो भी कंसल्टेंट है, वकील भी कंसल्टेंट है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को आके कोई अगर इंजीनियर वॉच करता है और मशवरा देता है, उसकी एक जुदागाना हैसियत है। तो कंसल्टेंसी एक तरह से कोई अलग से काम नहीं है
जी।
यूं कह लीजिए आपके एक एडवाइजरी है और ब्रोकरी के करीब करीब है
जी।
इसके अंदर अमल पाया जाना चाहिए, कोई ऐसा अमल के उर्फ के अंदर जिसको एक काबिल एतमाद अमल समझा जाता हो, काबिल उजरत अमल समझा जाता हो, तो महज बातें करने का नाम तो कंसल्टेंसी नहीं है।
ठीक,
तो देखा जाएगा किस तरह की कंसल्टेंसी है, क्या काम अंजाम पाया है और गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उस पर फैसला करना होगा कि इस मौके पर उजरत बनती है या नहीं बनती,
काम वगैरह की नोयत देखकर, उसकी कैफियत देखकर फिर फैसला।
हाँ, फिर फैसला।
ठीक,
फिर फैसला।
अगली कॉल दीजिए।
मेरा सवाल ये है कि मैंने किसी से कर्ज मांगा, उसने मुझे पैसों की बजाय मोटरसाइकिल दे दी, इसे कि इसे बेचकर अपना काम चला लो, और उसी ने वो मोटरसाइकिल मुझसे खरीद ली 50,000 की, और उसने ये कहा कि ये 50,000 की बजाय मैं आपसे 60,000 वसूल करूंगा एक माह के बाद, तो क्या ये जायज है?
अजीब हो गई सूरत है, अपनी चीज जो है वो इसको बेचने के लिए दी
जी,
खुद ही खरीद ली, खुद कैसे खरीद सकता है? खरीदो फरोख्त के लिए दो पार्टियां होना जरूरी है ना
जी।
यहाँ कितनी पार्टियां पाई गई?
पार्टी तो एक ही पाई जा रही है।
अपनी बाइक खुद ही खरीद ली भाई, अपनी बाइक अगर इसको गिफ्ट कर दी होती
जी
तो इसकी मिल्कियत में चली जाती
जी।
ठीक है,
ठीक
कि भाई अब ये मालिक हो गया
जी।
मोटरसाइकिल कर्ज लेने का मतलब ये हुआ कि इस्तेमाल के लिए लिए, कर्ज के तौर पर आरियत के तौर पर मोटरसाइकिल लेने से मालिक तो नहीं बन जाता बंदा।
ठीक है,
तो जिसने ये कर्ज के तौर पर या आरियत के तौर पर लिया वो मालिक तो नहीं बना।
ठीक,
तो उसको बेचने का इख्तियार भी नहीं रखता, तो अपनी ही चीज जो है वो खुद ही कैसे खरीद सकता है बंदा? तो ये सूरत पूछी गई है, ये खालिसतन सूदी सूरत है, اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے.
ٹھیک ہے مطلب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ایک تاجر اسلام بھائی نے کیا تھا تو وہ یہاں پہ بن رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی اور دیگر بھی مفتیان اکرام علماء اکرام جو ہیں وہ بعض اوقات صورتیں بیان کرتے ہیں کسی شرعی مسئلے کی کہ یوں کریں تو جائز ہے اور یوں کریں تو ناجائز ہے, بعض صورتیں بیان کرتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں وہ باب الحیل سے لے کر کے ہیلا بیان کر دیتے ہیں. تو اب بعض افراد جو ہیں ان کو لے کر اور پھر اپنے طور پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو مفتی صاحب نے کہا تھا اور یہ تو عالم صاحب نے کہا تھا اور یہ ہم نے فلاں سے سنا تھا, انہوں نے بیان کیا تھا کہ یوں ٹھیک نہیں ہے لیکن یوں ٹھیک ہے, تو اب ہم یوں کر رہے ہیں اور یوں جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غلطیاں کر رہے ہیں یا اس کو جو صورت بیان کی گئی تھی جس مقام کے لیے اس مقام سے ہٹ کے استعمال کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کی مدنی پھول اور رہنمائی ہو جائے.
اصل میں دیکھیے لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتی.
جی
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سنائی دیتا ہے
جی
وہ اس کے مطابق یعنی جو سنائی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے مسئلہ بیان کیا کہ دودھ حلال ہے,
ٹھیک ہے,
تو انہیں سنائی دیا دودھ حلال ہے, جو حقیقت تھی وہی سنائی دی,
ٹھیک ہے,
اور وہی انہوں نے سمجھا,
ٹھیک ہے.
تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہا جائے اس کی حقیقت کے مطابق سمجھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کے سمجھنے کی صلاحیت بہت عمدہ ہوتی ہے, اعلیٰ ہوتی ہے. اب دودھ حلال ہے یہ تو ایک عام سا جملہ ہے نا
جی.
اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو وہمی طبیعت کے ہوتے ہیں,
ٹھیک,
یا کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہم ہوتا ہے یا انتشار ذہنی ہوتا ہے, کہیں اور سوچ رہے ہیں یہاں کہا گیا دودھ حرام ہے
حلال ہے,
یہاں کہا گیا دودھ حلال ہے انہوں نے سمجھ لیا سود حلال ہے,
اللہ اکبر,
دودھ کے بجائے سود سمجھ لیا,
ٹھیک.
تو ایک تو یہ سمجھنے کا گیپ آ سکتا ہے,
ٹھیک.
دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل بات بیان کی جاتی ہے
جی,
آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کلاس میں اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تھیوری بیان ہو رہی ہے فزکس کی کیمسٹری کی یا کوئی اور نظریہ بیان ہو رہا ہے, اس کی جزیات بیان ہو رہی ہیں, ایک وہ ہوگا جو فوراً کھڑے ہو کے سنا دے گا,
ٹھیک,
ایک وہ ہوگا جسے سنا تو ہوگا
جی
لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی وہ کھڑے ہو کے سنا دے,
ٹھیک, کیچنگ پاور کمزور ہوگی,
کیچنگ پاور کمزور ہوگی, ڈلیور پاور کمزور ہوگی,
ٹھیک.
تو جب لوگ علماء سے مشکل مسائل سنتے ہیں تو کئی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں,
صحیح,
بعض اوقات ذہن حاضر نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ سن تو رہے ہوتے ہیں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی قوت نہیں ہوتی حافظے کی اس کو فوری طور پر بیان کر دیں,
ٹھیک,
فوری طور پر بیان کرنا مشکل ہوتا ہے, تو دو چار گھنٹے بعد, دو چار دنوں کے بعد, دو چار مہینوں کے بعد یہ بیان کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے,
ٹھیک.
پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو فوری طور پر بیان کرنے کی صلاحیت تو ہے, بعد میں بھول گئے,
صحیح,
یہ بھول جو ہے مسائل کے اندر اچھے اچھے سے ہو جاتی ہے. ہم اگر کسی موضوع پر بات کرنی ہو, کوئی نیا موضوع ہو, تو کتاب دیکھ کر آتے ہیں,
ٹھیک,
جی یہ موضوع کی جزیات کیا ہیں, تفریحات کیا ہیں, تقسیم بندی کیا ہے. تو عام آدمی کو حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے,
بلکہ وہ ٹھیک ہے اس کے ذہن میں یہ رہے گا, یہ خاکہ رہتا ہے کہ ہاں کچھ بیان ہوا تھا
جی,
کچھ اس بارے میں کہا گیا تھا,
ٹھیک,
تو جب بھی اس کو اپلائی کرنا ہو ایک دفعہ پوچھ لیا جائے,
ٹھیک,
اور نہ پوچھنے کی وجہ سے پوچھا جائے اہل افراد سے,
ٹھیک ہے.
ہیلوں کی ایک پوری دنیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ
اجازت بھی ہے
میرے پاس, تو لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اس حوالے سے
جی,
اور اگر میں ہیلوں پر داستانیں سنانا شروع کروں تو شاید صبح ہو جائے,
ٹھیک.
تو یوں بہت المناک صورتحال ہوتی ہے, خود اپلائی نہیں کرنا چاہیے.
اچھا مطلب بالکل ایک مختصر تھا کہ ان اس سچویشن کو دیکھ کے جو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے بھی ہے کہ صبح ہو جائے اگر یہ واقعات اس کے ہوں, تو اب ان چیزوں کو دیکھ کے کیا مطلب ہم انکار کرتے ہیں نہیں دیکھو یہ غلطی ہو رہی ہے نا اس لیے یہ غلط ہے, یہ بھی نہیں اس کی.
دیکھیے تجارت اور سود کے اندر طریقہ کار کا فرق ہے,
ٹھیک,
جب کوئی ہلا بتایا جا رہا ہوتا ہے تو طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے,
ٹھیک.
ابھی جنہوں نے سوال کیا ان کا سوال غلط تھا,
ٹھیک ہے,
اس کا حل میرے پاس موجود ہے,
ٹھیک ہے,
باقاعدہ لکھا ہوا ہے,
صحیح,
تین افراد کے ساتھ جو نا اگر یہی معاملہ کر لیتے
جی
تو جو اصل بنیاد یہاں قائم ہوئی ہے کہ ایک ہی آدمی نے اپنی چیز خرید لی, وہ جو غلط بنیاد یہاں پر بنی وہ ختم ہو جاتی,
ٹھیک ہے.
تو چونکہ میں بھی چینل پر ہلے نہیں بتاتا
جی,
اس لیے نہیں بتاتا کہ کچھ سمجھنا مشکل ہوتا ہے,
ٹھیک,
یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا متبادل موجود ہے, طریقہ موجود ہے, اب اس کو سمجھا جائے پھر,
ٹھیک. تو جی آپ کو بہرحال یہ جو کیفیات مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمائی ہیں، جو گفتگو فرمائی ہے، اس کا میں یوں حاصل کر لوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آپ کے ذہن کا الارم آپ کو جو ہے وہ محتاط کر رہا ہو کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر یقینی طور پہ کسی مفتی اسلام.
اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مسائل پوچھنے ہیں نا،
ٹھیک،
اور انہوں نے براہ مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن میں عام طور پر ڈیل نہیں کرتا. میں نے جو ہمارے استقبالیہ پہ اسلام بھی ہوتے ہیں ان کے حوالے کیا،
ٹھیک،
اور یہ عرض کیا کہ کوئی مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا.
ٹھیک،
مسائل بڑے ان کے، بالکل میں بھی پہلی دفعہ اس طرح کے مسائل مجھ سے پوچھے گئے.
ٹھیک،
تو میں نے بلایا بٹھایا. اب ان کے بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل،
ٹھیک،
یعنی ایک کے بعد ایک، مطلب کہ شعبہ ایک ہی تھا،
ٹھیک،
لیکن طریقہ کار بڑے مختلف قسم کے.
ٹھیک ہے،
میں نے سارے جوابات دیے. جوابات دینے کے بعد یہ کہا دارالفتا کے جو اسلامی تھے کہ جتنے سوال اور جواب میں نے ان کو بیان کیے ہیں نا
جی،
آپ ایسا کریں، ٹائپ کریں ایک ایک جملہ، یہ سوال تھا یہ جواب، بھلے فتوی کی صورت نہ ہو، ایک سادے پیپر پہ ٹائپ کر کے ان کو دے دیں. یہ دارالفتا سے باہر نکلیں گے بھول جائیں گے کہ کس چیز کو جائز کہا تھا، کس چیز کو ناجائز کہا تھا.
ٹھیک،
تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا نا مہارت
جی
اور ممارست. ممارست مطلب فیلڈ ہونا.
ٹھیک،
آپ کی ایک فیلڈ ہے، سنار سونے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام کا اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں ہے.
ٹھیک،
کپڑے والا اپنے دکان سے بڑھ کر، اپنے کام سے بڑھ کر کوئی اسے ماہر نہیں ہے کپڑے کے حوالے سے. تو یوں یہ پڑھنا پڑھانا دینی مسائل کبھی کبھار پوچھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ذہن سے جلدی نکل جاتے ہیں.
ٹھیک،
تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا، نوٹ کرنا، لکھ لینا، دوبارہ پوچھنا، یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے.
ٹھیک، تو ہمارے فورم بھی بہرحال اسی لیے ہے کہ آپ یہاں پہ بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں، کالز ہیں ہمارے پاس، کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی،
میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے ایک دکان کرائے پہ مل رہی ہے جو میرے بارے میں بھی ہے، لیکن وہاں آس پاس میں گانے چلتے ہیں، تو کیا میں وہ دکان لے سکتا ہوں اور مجھے کیا احتیاط کرنی پڑیں گی؟
ٹھیک ہے،
پاڑا جو ہے وہ سندھی میں محلے کو بولتے ہیں
جی،
اور ان کے محلے میں گانے چلتے ہیں، جہاں دکان مل رہی ہے وہاں گانے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ دکان میں جو جائز کام کریں گے
جی،
اگر دکان میں یہ جائز کام کریں گے تو دکان کرائے پر لینا تو جائز ہے.
ٹھیک،
اور دکان میں ضروری نہیں کہ آدمی ہر وقت فارغ بیٹھا رہے اور وہ ارد گرد سنتا رہے گانے.
ٹھیک،
لیکن یہ ہے کہ دیکھ لے، اگر بچ سکتا تو بچے، لیکن بچنا ضروری نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہ وہاں دکان کھولیں گے، گانوں سے انہیں محبت نہیں ہے، گانوں سے ان کو نفرت ہے. جو آوازیں آئیں گی اس پر یہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں، دل میں اس کو برا جانے، ان کے لیے برات کے لیے کافی ہے.
تکلف جو ہے وہ طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تکلف طاری کرنے کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ مشکلات میں نہ پھنس جائیں.
ٹھیک،
پتا چلا کہ روزگار کا معاملہ ہے اور کہیں اور روزگار بن نہیں رہا یا دکان مل رہی ہے، تو اگر یہ کھول لیتے ہیں تو جائز بہرحال ہے، ناجائز نہیں کہا جائے گا. اب یہاں ایک کلچر ہے، خاص طور پر اندرونی سندھ کے اندر، پنجاب کا مجھے اندازہ نہیں ہے، گاڑیوں میں جناب اتنی تیز آواز سے گانے بجا کے جائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں، مطلب کہ سارے مراسیوں کا کام یہی کر رہے ہوں. اسی طریقے سے بعض ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں
جی،
بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوں گے جناب،
ڈھابے،
ڈھابوں میں، ہوٹلوں میں، اسی طریقے سے اور طرح طرح کے دکانوں کے اندر ایک بڑے بڑے ڈیگ رکھ کر گانے چلانا اور میوزک چلانا، یہ ان کی ایک عجیب عادت ہے. اچھا، بالفرض اگر یہ ناطے پہ چلا رہے ہیں تب بھی ہم یہ کہیں گے محلے غور ہے، اتنی آواز سے آپ کو چلانے کی کیا حاجت ہے؟
صحیح،
ساتھ والا جو نا دکاندار، اس کے گاہک آ رہے ہیں تو وہ گاہک سے بات نہیں کر پا رہا.
ٹھیک،
اس کا فون آ رہا ہے تو فون نہیں سن پا رہا.
ٹھیک،
ڈیلنگ نہیں کر پا رہا. اور اگر گانے ہیں تو ویسے ہی ظاہر بات ہے اس سے مسلمان کو نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، مسلمان اس کو پسند نہیں کرتا.
ٹھیک،
اور بار بار جب وہ کانوں میں آواز پڑے گی تو طبیعت میں ایک پہنچال تو آئے گا.
ٹھیک،
ناپسندیدگی کے آثار تو واضح ہوں گے.
ٹھیک،
تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا اور ختم ہونا چاہیے.
یعنی گانے تو چلا ہی نہیں سکتے بھارت کی، اور وہ آپ نے فرمایا نعت یا تلاوت ہے تو اس میں بھی آواز دیکھی جائے گی. جی، اگلی کال دیجیے.
میں کراچی سے سعید رحمان بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ابھی दालों के या चावलों के रेट बढ़ने वाले हैं और इसे हम पहले से स्टॉक कर लें तो बाद में हम इसे महंगे दामों बेचेंगे, क्या ये सही है या गलत?
ठीक है जी, देखें दो जहते हैं इस मामले की। एक जहत तो ये है कि बंदा ये नियत करे कि महंगे हो जाएं, महंगे हो जाएं।
ठीक,
ये नियत करना सही नहीं है।
ठीक है,
इससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की नियत इसके अंदर पाई जाती है।
ठीक,
एक बंदा वो है जो ये समझता है कि एक मार्केट प्रैक्टिस है, एक चीज आती है, आते ही उसकी खपत नहीं होती।
ठीक,
अजनास के अंदर यही होता है।
ठीक,
जैसा कि मिर्ची का मौसम अभी गुजरा है।
ठीक,
तो मिर्ची जितनी भी पैदा हुई है वो सारी की सारी अगले दिन हंडिया में डाल दी जाए, ऐसा तो नहीं होता।
ऐसा नहीं होता,
बल्कि पूरे साल की जो जरूरत है वो पूरी की जाती है। और मिर्ची के अंदर यही ज्यादातर यही होता है कि उसके रेट चढ़ते हैं।
ठीक,
फिर ये देखा जाता है कि वो अगर कोई मिर्ची काली हो गई है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, उसकी कैफियत लाल ही रही है तो उसके रेट बेहतर होते हैं। लेकिन किसी और मुल्क से अगर मिर्ची आ जाए उन दिनों के अंदर तो उसके रेट ज्यादा होने हो, और औकात हिंद से आ जाती है तो उसके रेट गिर जाते हैं। तो एक आदमी उसको पता है कि मैं गंदम निकली है और इसका स्टॉक तो कोई ना कोई तो करेगा।
ठीक,
तो मैं कर लेता हूँ और जरूरत पड़ेगी जब मार्केट में तेजी आएगी तो चलो मुझे दो पैसे मिल जाएंगे।
ठीक,
तो यूं अपने नियत ये रखे कि इस तरह होता है और मैं इसलिए ये स्टॉक कर रहा हूँ।
ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, आपने कहा कि वो शय जो अपने पास मौजूद नहीं उसकी बाय नहीं की जा सकती। अर्ज यह है कि इस तरीके से पूरी दुनिया में जो बड़े से बड़ा कारोबार हो रहा है इसी सूरत से हो रहा है, और अगर इसको मना कर दिया जाए तो ये सारा निजाम रुक जाएगा। अगर कोई शय को वादा बाय कहकर बेचे और पैसे एडवांस ले ले और वादे के तौर पर बाद में बेचे तो क्या ये शरण जायज नहीं होगा?
ठीक है, पहले तो इन्होंने ये कहा कि दुनिया की का निज़ाम रुक जाएगा। मेरे भाई, दुनिया का निज़ाम तिजारत पर कायम है ना, तिजारत पर कायम है।
बिल्कुल,
एक आदमी चीज खरीद ले और वो चीज ही ना मिले तो निज़ाम रुकेगा ना
जी।
चीज उसे मिल रही है,
ठीक है,
ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों ने ऑर्डर दिए, माल खरीदा, बाहर से मंगवाया और माल उन्हें पहुंचता ही नहीं है। माल उन्हें मिल रहा है ना,
मिल रहा है,
जब मौजूद है जब ही मिल रहा है।
बिल्कुल,
लोग कहेंगे नहीं अगले महीने तैयार होता है तो भी आप अगले महीने खरीद लिया करें।
ठीक,
ठीक है ना। तो मामला ये है कि हर जगह ऐसा मामला नहीं है कि जी जो चीज मौजूद नहीं है उसे खरीदा जा रहा हो, बल्कि लोग मौजूद चीजों को ही खरीदते हैं।
ठीक, अक्सरियत में ऐसी
अक्सरियत ऐसा है। फिर जो बड़े ऑर्डर होते हैं, किसी कंपनी को पूरा कंटेनर का कोई ऑर्डर दिया है, तो जाहिर बात है वो हम दूसरे शिक में बयान कर चुके कि जहाँ मेकिंग पाई जाती है एक कंपनी जो है वो चीज बना कर देगी, मेकिंग करके देगी, तो ये बेस सिस्टम के अंदर आता है।
ठीक,
यहाँ जवाब की सूरत मौजूद है।
सही,
ये दुश्वारी पेश आती है उन बड़े ताजिरान के साथ कि जो चाइना से माल खरीदते हैं, किसी और मुल्क से माल खरीदते हैं, और वो माल जो है वो अभी उन्हें मिला नहीं होता। उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया अपनी कंपनी को,
ठीक है,
वो कंपनी वो माल बना रही है,
ठीक,
और यहाँ वो पहले से भेज देते हैं पाकिस्तान में।
सही,
ये जो मेरा कंटेनर आ रहा है आपको भेज देंगे। कंटेनर का तो उसने वसूल ही नहीं किया है।
ठीक,
तो इस तरह के जो तेजी है ये लोगों की अपनी तेजी है।
ठीक,
तो ये तेजी खत्म हो सकती है, इससे कोई भूचाल नहीं आएगा, कोई खराबी पैदा नहीं होगी, चीजों की जो कीमतें वो बैलेंस में रहेगी
इस तरीके से।
बिल्कुल
ठीक है, उसे होता ही है ना कि जो जो काम कर रहा होता है ना उसको उस पर जब पड़ती है नजर तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है।
अच्छा, दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जी यूं कर ले कि जी ये वादा है और वादा जनाब हमने वादा किया सिर्फ, तो भाई मेरे वादे का माना समझता तो हो कोई। उससे ये कहा जाए कि ठीक है, वादे का मतलब ये है कि हम आपसे ना खरीदें तो कोई आज नहीं है, माल वो कंटेनर चढ़ा चुका हो
जी
जहाज पर,
ऐसा वादा
लाखों लाख का माल हो, और वो बोले कि अच्छा सिर्फ वादे की बुनियाद पर मैं तुम्हें ऐसा कर लूं, कौन ऐसा करेगा?
ऐसा तो नहीं होगा।
ऐसा होता है कि जिससे 20-25 साल का काम हो, दूसरे का एतमाद हो, फिर वो आपकी बात समझता हो, उसका दीनी जहन हो, वो वादे की जो तफरियात हैं, जो नतायज हैं वो समझता हो कि वादे का ये मतलब है, वादे से यही असर पड़ेगा।
ठीक है,
और वो आपकी बात मान ले तो ठीक है, गुंजाइश निकल आएगी
जी।
लेकिन आम हालात में लोग नहीं समझ रहे होते हैं कि वादे का क्या मतलब है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
ये मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मेरा जो सप्लाई का काम है और मैं अभी बाबुल मदीना कराची में कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैं लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, क्या वो मैं कारोबार अपने किसी दोस्त को बेच सकता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी दूसरे जो मेरे ग्राहक हैं उनको मैं मिला दूँ और वो जो ग्राहकों से कॉन्टेक्ट कर दे और जितना भी मेरा पैसा उन ग्राहकों से लेना है वो भी दे दे, और इससे ज्यादा भी क्या मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करके ग्राहक बनाए हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा
जी। मुझे क्या सवाल है?
गुडविल
नहीं, किस तरह का काम होगा इनका?
सप्लाई है, मतलब किसी भी चीज की सप्लाई जो करते हैं, ये कस्टमर बने हुए इनसे लेते हैं।
आमतौर पर जो है दूध वाले
जी जी,
अखबार वाले
जी,
आजकल पानी पहुंचाया जाता है पानी वाले
जी,
इस तरह का सवाल करते हैं कि जी मेरी इतनी चेन है और मैं ये बेचना चाहता हूँ।
ठीक है,
तो खरीदो फरोख्त तो माल की होती है।
ठीक है,
कि कोई माल खरीदा और बेचा जाता है
जी।
एक दूध वाला है या एक पानी वाला है, उसका पानी या उसका दूध जो है मिसाल के तौर पर 200 अफराद तक पहुंचता है, तो वो 200 अफराद क्या इसके गुलाम हैं जो इनको बेच रहा है? अफराद को तो बेच भी नहीं रहा है
जी,
इन दोनों का कसब भी नहीं है। ये किस चीज को बेच रहे हैं? ये एक सहूलत और एक गुडविल को बेच रहे हैं, यानी माल नहीं है।
ठीक,
माल नहीं,
माल नहीं है।
जब माल नहीं है तो उसकी कीमत भी नहीं हो सकती।
ठीक है,
अब इसके अंदर ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई पानी सप्लाई करता है
जी,
पानी आमतौर पर बोतलों में सप्लाई किया जाता है।
ठीक,
तो अब इनका सौदा होने लगा है मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए में।
सही,
तो वो जो बोतलें रखी हुई हैं 50 या 100, वो बोतलें 5 लाख की बेचती।
ठीक,
तो भैया मैं बोतलें बेचना चाहता हूँ और मैं आपको काम भी समझा देता हूँ, इस तरह काम है, ये पैसे मैं इन बोतलों के ले रहा हूँ।
ठीक है,
इतनी गुंजाइश मौजूद है।
सही,
दूध के अंदर तो वो सूरत भी नहीं निकलेगी।
ठीक
है, दूध बोतलों में तो दिया नहीं जाता
जी, थैलियां बेच नहीं सकती,
थैलियां बेच नहीं सकते, कैसे बेचेंगे वो?
ठीक है,
ये कोई सूरत ही नहीं बनेगी। तो बाद औकात हल निकल आता है, हर चीज का पहले निकलता।
मतलब दुकानों में भी इस तरीके से होता है गुडविल का मामला, कि कोई दुकान है चलती हुई, दुकान है, फैक्ट्री है, या कोई भी बिजनेस है चलता हुआ रनिंग बिजनेस है, और जो बिजनेसमैन है वो कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा है, कोई भी वजह है, किसी भी वजह से वो अपना बिजनेस से निकलना चाह रहा है तो वो बेचना चाहता है। अब मिसाल के तौर पर अगर दुकान है तो उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है, उसमें जो मटेरियल वगैरह या जो जो भी आइटम रखे हुए हैं वो भी समझ लें 50 लाख रुपए के हैं, तो ये बन गए 1 करोड़ रुपए बन गए सीधे सीधे मार्केट वैल्यू के मुताबिक। लेकिन वो डिमांड कर रहा है 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि इसकी एक दुकानदारी जमी हुई है, कस्टमर के पांव लगे हुए हैं, तो अब ये 1.5 करोड़ रुपए दुकान बशमूल सामान सब चीजों के मांग रहे, तो इसकी इजाजत हो?
सामान के पैसे जितने चाहे मांगे वो।
ठीक है,
सामान तो माल है ना ऐसे।
जी 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 जी,
सामान के जितने चाहे पैसे मांगे।
ठीक है,
गुंजाइश मौजूद है।
ठीक है,
अमारात के अंदर ऐसा मामला है, यहाँ तो आपने कहा ना उसकी दुकान जमी हुई है
जी जी,
मिसाल के तौर पर उसकी दुकान थी किराने की
जी,
आने वाला कुछ और खोलेगा
जी,
अब उसका ग्राहकों से तो ताल्लुक नहीं है
जी,
लेकिन वहाँ एक ऐसा लाजिम और मलजूम मामला है कि एक बंदा दुकान ही खाली नहीं करता, बिल्कुल खाली नहीं करता, कि मैं खाली नहीं करूँगा, मुझे गुडविल चाहिए।
ठीक,
तो अब वहाँ का क्या रूप बनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। तो यूं पाकिस्तान में सर जान कम है
जी,
वहाँ लाजिम है।
ठीक है, शरई हैसियत उसकी वो एक जुदा
जुदा वहाँ।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद शफीक अफ्तारी है, मुझे प्रॉपर्टी के काम करता हूँ। इस हवाले से ये मुझे पूछना था, जैसे कोई शख्स कहता है कि मेरा प्लाट ये बेच दें आप 4 लाख रुपए में, और मैं आज किसी को कहता हूँ कि भाई आपको प्लाट मिल रहा है 4.5 लाख रुपए में, तो अभी प्लाट मेरे हाथ में आया भी नहीं, तो इस तरह सौदा करवाना कैसा, और अगर इसकी कोई जायज इस तरह की अच्छी कोई सूरत है तो वो भी शायद फरमा दीजिए।
ठीक है,
बड़ा ही अजीब जो ना वो गोरख धंधा है प्रॉपर्टी का।
देख,
प्रॉपर्टी की जो फील्ड है, प्रॉपर्टी वालों के अंदर मामला ये है कि इनकी हैसियत जो ब्रोकर्स होते हैं एक नुमाइंदे की होती है।
ठीक है,
लेकिन इन्होंने अब अपनी हैसियत चेंज कर ली है।
ठीक है,
वहां से एक लिंक मिला है इनको कि एक बंदा प्लाट बेच रहा है
जी,
उस लिंक को ये शो नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, और एक अपनी कीमत दे के मार्केट में पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, ये प्लाट जी इतने का आपको हम देंगे। भाई आपको तो उस बंदे ने बेचने का कहा था,
ठीक है,
जो कीमत कही थी आप वो कीमत जाकर
कमीशन एजेंट
और अपनी कमीशन ले। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब ये तो बेच रहा है बंदा 4 लाख का और ये प्लाट तो बिक सकता है 20 लाख का, बजाय इसके कि कंसल्टेंटी करते हुए मशावरत और एडवाइजरी करते हुए आप उसको ये मशवरा देंगे 4 के बजाय इसकी कीमत 20 है,
ठीक है
ये 20 का बेचो। नहीं, अभी सामने वालों को जाके बोलेंगे 20 का जनाब,
ठीक है,
और फिर कोशिश ये करेंगे कि 16 खुद रख लें
जी,
4 उसको दे दें,
ठीक है,
और
4 में से भी कमीशन ले,
4 में से भी कमीशन ले लें। खैर ये मिसाल कुछ ज्यादा होगी, 16 और 4 का गैप आमतौर पर
नहीं, बईद नहीं है, जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ईमानदार लोग और तरीके से काम करने वाले,
ये ईमानदारी का काम नहीं है।
नहीं, जो लोग हैं वो अपने
नहीं, ये जो काम है ईमानदारी का काम नहीं है,
जी जी जी,
ये दयानतदारी के खिलाफ है। और ये जो मामला है भाई प्लाट इनका थोड़ी था
जी।
बात वही आ गया, जो चीज मिल्क में नहीं है वो बेचना
जी।
जब आप उसके मालिक नहीं है तो आप खुद अपनी चीज कहकर कैसे बेच सकते हैं,
ठीक
है, आप नफा किस चीज का ले रहे हैं जब आपकी चीज ही नहीं है वो, तो
ठीक। मुझसे भी यहाँ पे दो सवाल, एक तो ये सूरत थी जो इन्होंने बयान करी, आपने जवाब इशारा था, बाज़ औक़ात जिस पार्टी का वो प्लाट मकान या दुकान वगैरह एक्स वाई ज़ेड जो कुछ भी मिलकियत चीज होती है वो ऑफर करती है इस्टेट एजेंट को या रियल एजेंट को कि भाई आप जो है ना मुझे इसके आप 20 लाख रुपए दिला दें। अब आप कितने का बेचेंगे वो आप जाने, आप जितने भी ऊपर का बेचेंगे वो आपका कमीशन हो जाएगा, मुझे 20 लाख नेट दे दें।
ऐसा उर्फ है,
ये होता है मार्केट में,
कितना होता है
उसे असल में ये करते हैं इन्वेस्टर। अच्छा। ये जो आम खरीदार या बेचने वाले होते हैं वो तो इस तरीके से नहीं करते, इसमें करते हैं इन्वेस्टर के जिनका काम यही होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह
प्रॉपर्टी में होता है,
ये प्रॉपर्टी में मुझे पता है बाकी का।
अच्छा चले फिर किसी को देखेंगे,
ठीक है। दोस्तों एक सवाल और कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीधे तरीके से अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं और वो शरीयत के दायरे में रहकर भी कर रहे हैं और कानून और अखलाकियात के तकाजे भी वहाँ पे पूरे हो रहे हैं, लेकिन होता क्या है वो मुर्गी काटने वाला मामला हो जाता है और वो फिर मार्केट में गुडविल नहीं रहती ऐसे अफराद की, जो आप अभी प्लाट की हम बात कर रहे थे 4 से 20 का बेचा, तो गुडविल नहीं रहती मार्केट में इसकी। और अगर इनके बारे में मार्केट की राय ली जाए तो इनसे मुस्तकिलन जो कस्टमर होते हैं, अगर चाहे प्रॉपर्टी के काम में मुस्तकिल कस्टमर कम होते हैं लेकिन जो मुस्तकिल कस्टमर होते हैं वो फिर इनसे रब्ता नहीं करते कि उन्हें पता होता है।
देखिए जब आपने नाम मुर्गी का ही ले लिया है तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे लोगों को दाना डालना आता है,
ठीक है,
नए इन्वेस्टर ढूंढना आता है,
ठीक है,
नए इन्वेस्टर को मार्केट का आइडिया नहीं होता
जी,
तो ये नए इन्वेस्टर्स के पास पहुंचते हैं, यूं दाना डालते रहते हैं,
ठीक। अगली कॉल दीजिए।
हिंदू गुजरात जामनगर से मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह मुफ्ती अली असगर साहिब का सिलसिला अहकाम तजारत जारी वसारी है। मुफ्ती साहब के बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई चीज बेचते वक्त उसके अंदर ऐब हो और उसको बताए बिना ही बेच दिया तो क्या ये धोखा कहलाएगा?
अब बिला शुबा उसको इस तरह बेचना धोखा कहलाएगा। बात चीजें ऐसी होती है वो सेकंड हैंड के तौर पर बिकती हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई जैसे भी ये देख लो आप, आपके सामने मैं इसकी खराबी से इसकी खामी से बरी हूँ, फिर वो जुदा गाना सूरत है, वो धोखा नहीं कहलाएगा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मैंने ये सवाल करना था कि मैंने एक मिसाल के तौर पर मोबाइल लिया, तो मोबाइल के मैंने पेमेंट करनी है मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए, तो आगे मैंने फरोख्त कर दिया उसको 25,000 का मिसाल के तौर पर ना, तो ये ऊपर से जो मैंने नफा लिया है अब पीछे जो मैंने पैसे पेमेंट नहीं ना दी, तो ये मुनाफा लेना मेरे लिए क्या जायज है?
ठीक है जी,
बड़ा टेक्निकल सवाल किया इन्होंने। इसको मैं दूसरे अल्फाज में यूं कहूं कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार उधार में माल लेकर आता है होलसेलर से
जी,
दुकानदारों में तो चलता है
जी,
एक महीने के उधार पर लेकर आया,
ठीक है,
अपना नफा रख के उसने वो माल रिटेल में भेज दिया
जी,
कारोबार ही यूं होता है,
ठीक है,
पूरी दुनिया के कारोबार इसी अंदाज पर होते हैं,
सही,
तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। माल अपने कब्जे में अगर ले लिया है तो कब्जे में आने के बाद उस माल से नफा उठाना जायज है,
ठीक,
जो माल कब्जे में ना आया हो उससे नफा उठाना जायज नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया कि उस नफे से आपने मना फरमाया कि जो ऐसी चीज से लिया गया हो जो जमान में ना आई हो, कब्जे में ना आई हो, तो चीज आपके कब्जे में आ गई है आप उससे नफा उठा सकते हैं अगर चाहे आपने वो उधार में खरीदी थी।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि एक शख्स फर्जी नाम सलीम ने नईम से हैवी डिपॉजिट पर रूम लिया और उसी रूम को किसी और को रेंट पर दे दिया और उसका रेंट जो है तो वो कमाकर खा रहा है, तो ऐसा करना कैसा?
ठीक है, कोई चीज किराए पर ली है और फिर वही चीज खुद आगे किसी और को किराए पर दे दी, ऐसा करने के लिए फुकाए कराम ने तीन शरायत बयान की हैं। एक शर्त यह है कि उस चीज के अंदर कोई इजाफा कर दे, मिसाल के तौर पर रूम है तो कलर करवा दिया, रंग पर्दे लगवा दिए, कारपेट लगवा दिया, बेड लगवा दिया, कोई इजाफा कर दे, उस इजाफे की वजह से वो ज्यादा कीमत पर किराए पर दे सकता है। ज्यादा कीमत पर नहीं दी है तो कोई हर्ज नहीं है, सेम कीमत पर कोई देता भी नहीं है। मुमकिन है बात सूरतों में देना पड़े, एक आदमी रह रहा था उसको गांव जाना पड़ गया, वो सेम कीमत पर देकर चला गया, तो सेम कीमत पर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी सूरत थी। तीसरी सूरत ये बयान की गई कि जो मुआवजा है, मिसाल के तौर पर आपको मिलता है, आपने लिया था पैसों के बदले और उसको दे दे चावल के बदले कि ठीक है दो बोरे चावल मैं लूंगा आपसे हर महीने की, फुला फुला जिनके चावल होंगे, अगर ठीक ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक सूरत बयान की गई है।
ठीक,
तो यूं इजाफे वाले जो सूरत है वो सबसे आसान है, ऐसे जिसके अंदर इजाफा कर दिया जाए, इजाफे के जरिए आगे किराए पर दे दिया जाए। अब यहाँ मौसम है हज का, हज पर लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ये मसला दुश्वार होता है हज और उमरा का जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा दुश्वार ये मसला। उनका ये होता है कि जनाब एक बंदे ने जो होटल का मालिक, तो होटल कभी चलाता ही नहीं है,
ठीक,
जो होटल होते हैं मालिक तो शायद ही को चलाता हो,
ठीक,
एक ने मालिक से ले लिया,
ठीक,
अब उसने आगे ठेकेदार को दे दिया
जी
कि तुम किराए पर चलाओ, ठेकेदार ने तकसीम शुरू कर दी, इस किसी ने 5 कमरे लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 1 फ्लोर लिया, उन्होंने फिर आगे किराए पर जाना शुरू कर दिया, तो यूं एक जगह कम अज कम 5-7 अफराद से गुजर कर आगे पहुंचती है।
ठीक,
और ऐसे में जो कंट्रोल है वो पहले आदमी के पास होता है, बेडशीट वही चेंज करेगा, जितने भी आदमी है इनमें से कोई भी जाके इजाफा नहीं कर सकता,
ठीक,
वही सब कुछ कर रहा होगा। हाँ, कोई बड़ा ठेकेदार है और किसी ने पूरा फ्लोर ही उठा लिया है तो शायद उसका कोई अमल दखल हो जाए, लेकिन मामला ये होता है कि किराएदारी का मुआहदा होता है कलील मुद्दती मियाद पर, तो कलील मुद्दती मियाद पर इजाफा वगैरह भी नहीं कर पाते, जो साल के लिए लेते हैं, 6 महीने के लिए लेते हैं, फिर भी कोई ना कोई इजाफा कर सकते हैं। मसला बयान कर दिया है, फतावा रज़िया शरीफ में भी यही बयान किया गया है, बाहर शरीयत में भी और दिगर जो किताबें हैं फुकाए अनाफ की उनमें मसला इसी अंदाज पर बयान किया गया है। तो अब जो बचत की सूरत है वो इख्तियार की जाए।
ठीक, तुम्हारे सिलसिले का ड्यूरेशन भी खत्म हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ताजर जो मुत्तक।